का था, रूह वही रूप नया।
अगली कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है खूबसूरती और इसे लिखा है मशहूर फ्रेंच लेखक गी द मोपासा ने। कितनी विचित्र हैं वे अतीत की स्मृतियां जिनसे हम चाहकर भी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। एक बहुत पुरानी याद को जिसे मैं भी नहीं समझ पाता कि क्यों वो मेरी स्मृति में इतनी गहरी जुड़ी है। मैंने अपने जीवन में अनेक आपराधिक घटनाएं देखी हैं, वे प्रभावशाली तथा डरावनी भी थीं, किंतु उसके उपरांत भी मैं चकित हूं कि मैंने एक दिन भी मदर बेलफ्लावर का चेहरा विस्मृत किए बिना कैसे गुजारा, जो मेरे जहन में बार बार उभरता है। मैं उसे बहुत समय पहले से ही जानता हूं, तब मुश्किल से मेरी आयु 10-15 वर्ष की रही होगी। वो एक पुरानी दक्ष रफूगर थी जो सप्ताह में एक दिन मेरे माता पिता के घर पर वस्त्रों की सिलाई करने या रफू करने आया करती थी। मेरे माता पिता गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहा करते थे जिसे शेटो के नाम से जाना जाता है। वो नोकदार छतों वाले घर हुआ करते थे जिनके साथ 3-4 खेत भी लगे होते थे। गांव महज एक छोटा सा व्यापारिक कस्बा सा था, वो बमुश्किल कोई 100 गज के क्षेत्रफल में फैला था और विशेषतः चर्च के चारों तरफ बसा हुआ था। चर्च मूल रूप से लाल रंग की ईंटों का बना था जो वक्त के कारण बहुत पुराना होने से अब काला पड़ गया था। प्रत्येक गुरुवार को नियमित रूप से मदर बेलफ्लावर यही कोई सुबह 6:30-7 बजे हमारे घर आया करती थी और सीधे हमारी रसोई में प्रविष्ट होकर अपना कार्य निपटाने लगती थी। वो खासी ऊंची कृशकाय थी तथा उसके पूरे जिस्म पर काफी घने बाल थे। बड़ी विस्मयजनक अप्राकृतिक सी एक अप्रत्याशित दाढ़ी उसके चेहरे पर थी, जैसे किसी पागल ने उसके चेहरे पर यह दाढ़ी अलग से लगा दी हो। वो स्त्री के रूप में एक रीछ जैसी थी। उसकी नाक पर, नाक के नीचे, नाक के चारों तरफ, ठुड्डी पर, गालों पर और भौहों पर भी बाल ही बाल थे और उसकी भौहें कुछ अधिक मोटी, घनी और सफेद थीं। वो ऐसी लगती थी गोया किसी ने गलती से उसके चेहरे पर एक जोड़ी मोटी घनी मूछें चिपका दी हों। वो लंगड़ाया करती थी लेकिन साधारणतः किसी लंगड़े व्यक्ति की भांति नहीं, बल्कि हिचकोले लेते हुए जहाज की भांति। जब वो अपनी ताकतवर हड्डियों वाले लंबे जिस्म का भार अपने मजबूत पैरों पर रखा करती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वो किसी तेज लहर को पार करने की कोशिश कर रही हो। फिर वो अचानक यूं नीचे की ओर हो जाती थी जैसे किसी खाई में गायब हो गई हो। उसकी चाल से सदैव किसी तूफान से घिरे जहाज की याद आती थी और उसका सिर सदैव एक बड़ी सी टोपी से ढका रहता था जिसमें बंधा रिबन हमेशा उसकी पीठ पर फहराता रहता था और उसकी चाल की प्रत्येक लचक पर उसका सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिला करता था। मुझे मदर बेलफ्लावर बेहद प्यार करती थी, वो मुझे बहुत चाहती थी, मैं भी उसे बहुत चाहता था। जैसे ही मैं सुबह उठता और हमेशा रसोई घर में पहुंचता जहां मैं उसे कार्य में मसरूफ देखता था, उसके पांवों के नीचे ऊनी कालीन का एक छोटा सा टुकड़ा बिछा रहता था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता वैसे ही वो अपने पांव के नीचे पड़े ऊनी कालीन के मोटे टुकड़े को खिसकाकर मुझे बैठने के लिए दे दिया करती थी ताकि छत के नीचे लंबे चौड़े ठंडे कक्ष में मुझे कहीं सर्दी ना लग जाए। रसोई में अपनी लंबी आड़ी तिरछी और सुन्न उंगलियों से वस्त्रों को रफू करते हुए वो मुझे काफी कहानियां सुनाया करती थी। उसकी आंखों पर नजर का एक मोटा चश्मा चढ़ा होता था। अधिक उम्र में उसकी नजर कमजोर हो गई थी, उसकी आंखें खराब सी हो गई थी। मोटे चश्मे के पीछे उसकी आंखें मुझे बहुत बड़ी, बहुत गहरी, तकरीबन सामान्य से दोगुने आकार की लगा करती थी। जहां तक मैं स्मरण कर सकता हूं वो मुझे जो कहानियां सुनाया करती थी उनसे मेरा बाल मन प्रभावित हुआ था और उनसे मुझे यही समझ आया था कि उस गरीब स्त्री के पास एक बड़ा उदार हृदय था। वो मुझे बताया करती थी कि गांव में क्या क्या कुछ घटा, किस तरह कोई गाय किस प्रकार गौशाला से भागी और अगले दिन प्रॉस्पर मेलेट के मिल में सामने चलती हुई चक्की को देखते हुए खड़ी पाई गई, या फिर किसी मुर्गी के बारे में बताती थी जो बेलफ्राई में अंडा देती नजर आई। किसी को समझ में नहीं आता था कि वो कौन सा जंतु है, या फिर कभी कभी वो किसी विशेष स्थान के किसी कुत्ते की रोचक कहानी सुनाने लगती थी। वो मुझे ऐसे तमाम छोटे मोटे किस्से इतने रोमांचक और रोचक तरीकों से सुनाया करती थी कि वे मेरे दिमाग में कभी ना भुलाए जाने वाले नाटकों या किसी रहस्यमय कविताओं की तरह लगते थे, जो कि मेरी माँ रात्रि को सोते वक्त सुनाया करती थी। उन सब में भी वो बात नहीं रही थी, वो संपूर्ण जीवंतता नहीं थी जो गांव की इस निश्चल औरत की साफ किस्सा गोई में थी। खैर, एक गुरुवार को, जिसमें तमाम सुबह मैंने बेल फ्लावर से कहानियां सुनने में गुजारी थी, तब मैं ऊपरी मंजिल पर उसके पास जाना चाहता था, विशेषकर अपने नौकर के साथ घर के पीछे जंगल से बीन कर लाए हेजल नट्स को लेकर। मुझे वो घटना आज भी इतनी अच्छी तरह से याद है गोया वो कल की बात हो। रसोई का कक्ष खोलने पर मैंने देखा कि वो पुरानी रफूगर अपनी कुर्सी पर लुढ़की पड़ी हुई थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, उसके हाथ फैले हुए थे, एक हाथ में रफू करने वाली सुई और दूसरे हाथ में मेरी एक कमीज थी। नीचे स्टॉकिंग से ढका उसका एक पैर कुर्सी के नीचे फैला हुआ था और दीवार के प्रकाश के कारण दमक रहा था। उसका चश्मा उससे कुछ दूरी पर जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं मारे खौफ के वहां से चीखता हुआ भागा। मेरी आवाज सुनकर सब दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और कुछ ही वक्त में मुझे बता दिया गया कि मदर क्लोशेरे उर्फ बेलफ्लावर अभी संसार में नहीं रही। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे बाल सुलभ मन में कैसा गहरा सदमा, संताप, दुख और भयानक वेदना को मैंने महसूस किया था। मैं धीरे से चुपचाप अतिथि कक्ष में गया और एक बड़ी आराम कुर्सी के पीछे एक अंधेरे कोने में अपने आप को छुपा लिया। वहां अपने आप को घुटनों के बल झुकाकर खूब जी भर कर रोया। मैं वहां उसी स्थिति में बहुत देर तक बैठा रहा। रात घिराई थी। अचानक उस कक्ष में कुछ लोग लैंप के साथ आए। उन लोगों की मुझ पर दृष्टि नहीं पड़ी। मैंने सुना कि मेरे माता पिता एक चिकित्सक से चर्चा कर रहे थे, जिसका स्वर मैं पहचान गया था। चिकित्सक को तत्काल बुलवा लिया गया था और वहां घर में हुई दुर्घटना के विषय में विस्तार से बताया जा रहा था, जिसे मैं जरा भी नहीं समझ पा रहा था। यद्यपि चिकित्सक तमाम बातें कहकर वहीं बैठ गया था और उसके पश्चात उसने एक ग्लास लिम्बर भी पिया था और एक बिस्किट खाया था, उसके बाद वो निरंतर बोलता चला गया, बताता चला गया। उसने उस वक्त जो कुछ बताया वो मरते दम तक मेरे जहन में बैठा रहेगा। मेरे विचार से उसने जो कुछ उस दिन कहा, उसके कहे शब्द आज भी ज्यों के त्यों मैं दोहरा सकता हूं। वो बोला था, ओह वो बेचारी स्त्री, जिस दिन मैं इस गांव में आया था उसी दिन वो अपना पैर तोड़वा बैठी थी। एक लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद, यहां तक कि मुझे हाथ पांव धोने का भी वक्त नहीं मिला था कि मुझे तत्काल ही उसके घर भेज दिया गया, क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ गंभीर मामला था। वो उस वक्त बामुश्किल 17 की थी और गजब की खूबसूरत, बेहद सुंदर। क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? मैंने इससे पहले उसकी जिंदगी की कहानी कभी किसी को नहीं बताई है, सिवाय एक और व्यक्ति के जो अब इस इलाके में नहीं रह रहा है। वो अभी तक उसके विषय में सब कुछ जानता है। अब चूंकि वो मर चुकी है, संभवतः अब मैं थोड़ा बहुत उसके विषय में बता सकता हूं। एक युवा सहायक अध्यापक उसी वक्त गांव में रहने आया था। वो देखने में सुंदर और आकर्षक था, और उसके जिस्म की बनावट किसी फौजी के जैसी लगती थी। गांव की तमाम लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, किंतु वो अहंकारी था। अपने बड़े अधिकारियों, विशेषकर स्कूल का जो प्रधानाध्यापक था मिस्टर ग्रोबू, उससे वो बेहद खौफ खाया करता था। ग्रोबू ने पहले ही खूबसूरत हॉरेंटेस को नौकरी पर रख लिया था, जो अभी अभी यहां मरी है, वो जिसे बाद में क्लोशेरे या फिर मैडम फ्लावर का नाम दिया गया। सहायक अध्यापक ने अपनी सहयोगिनी खूबसूरत हॉरेंटेस को पहले ही फंसा लिया था, और वो भी बेशक उस अहंकारी और खुद को सबसे अनोखा समझने वाले अपने साथी स्कूल अध्यापक के द्वारा पूरे गांव में चुन लिए जाने के कारण बहुत खुश थी। हर तरीके से वो अध्यापक के जाल में फंस गई थी, और सहयोगी अध्यापक ने किसी भी प्रकार हॉरेंटेस को अपने दिन भर के सिलाई कढ़ाई का काम पूरा करने के बाद स्कूल की ऊपरी मंजिल पर बने भंडार गृह में रात को अकेले में मिलने के लिए तैयार कर लिया था। स्कूल में दिन भर के कार्य के पश्चात उसने सब पर यह जताया जैसे कि वो घर लौट रही हो, और अपने सहयोगी ग्रोबू को छोड़ते समय सीढ़ियां नीचे उतरने की बजाय ऊपर मंजिल पर चली गई, और वो भंडार गृह में रखे घास और भूसों के बीच में छिपकर अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर में वो भी वहां पहुंच गया। तभी अचानक भंडार गृह के द्वार पर आहट हुई। जैसे ही द्वार खुला, वहां पर स्कूल का प्रधानाध्यापक खड़ा था। उसने ऊंचे स्वर में पूछा,
तुम यहां क्या कर रहे हो सिजिसबर्ट?
सहायक अध्यापक सिजिसबर्ट को जब पुख्ता यकीन हो गया कि अब वो पकड़ा जाएगा, बच नहीं पाएगा, तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और शीघ्र ही उसने बड़ा ही बेवकूफाना जवाब दिया, मिस्टर ग्रोबू, मैं यहाँ चारे के ढेर में कुछ देर आराम करने चला आया था। वो भंडार गृह बहुत बड़ा था और उसमें चारों ओर अंधेरा था। सिजिसबर्ट ने अंधेरे में लड़की को द्वार की ओर धकेलते हुए कहा,
तुम वहां जाओ और छुप जाओ। मैं तो शायद नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, इसलिए प्लीज प्लीज तुम वहां जाकर छुप जाओ।
जब प्रधानाध्यापक ने भंडार गृह में कुछ फुसफुसाहट सुनी तो वो पूछने लगा,
क्यों, क्या तुम भंडार गृह में अकेले नहीं हो?
जी हाँ, मैं तो अकेला हूं मिस्टर ग्रोबू।
लेकिन तुम तन्हा लग तो नहीं रहे हो, अभी अभी तो तुम किसी से बातें कर रहे थे।
ओ मिस्टर ग्रोबू, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं।
ठीक है, शीघ्र ही मुझे सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा।
ये कहते हुए उसने बाहर से दरवाजा बंद किया और लालटेन लाने के लिए सीढ़ियों से निचली मंजिल पर चला गया। उसके बाद उस युवा कायर का दिमाग पूरी तरह घूम गया, क्रोध से उसका सिर भन्ना गया, और वो एक ही बात कई दफा रटे जा रहा था, जाओ जाओ जाकर चारे के ढेर में घुस जाओ, अपने आप को छुपा लो, वो तुम्हें देख न ले, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सारा करियर बिगाड़ दिया, जाओ जाओ अब छुप जाओ। शीघ्र ही दोनों ने बाहरी द्वार के ताले में चाबी घुमाने की आहट सुनी। हॉरेंटेस कक्ष में बनी खिड़की के करीब दौड़कर गई, जो बाहर सड़क की तरफ खुलती थी। जल्दी से खिड़की के पल्ले खोले, फिर पूरे यकीन के साथ मध्यम स्वर में बोली,
जब वो चला जाएगा ना, तब आकर तुम मुझे उठा लेना।
और इतना कहकर वो खुली खिड़की से नीचे कूद गई। बुजुर्ग ग्रोबू ने कक्ष में प्रवेश किया तो उसे और कोई नहीं मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, वो नीचे उतर गया। कोई 15 मिनट बाद सिजिसबर्ट मेरे पास आया और तमाम किस्सा मुझे सुनाया। वो लड़की सड़क पर स्कूल बिल्डिंग की दीवार के किनारे वैसी ही पड़ी थी। वो उठने योग्य स्थिति में ही नहीं थी, क्योंकि वो दूसरी मंजिल से कूदी थी। मैं सिजिसबर्ट के साथ उसे सड़क से उठाने गया था। उस वक्त रात को मूसलाधार बारिश होती रही थी। मैं उस अभागी लड़की को अपने साथ घर ले आया था। उसका दायां पांव 3 जगहों से टूट गया था, हड्डियां मांस से बाहर निकल आई थी, लेकिन उसने किसी भी तरह की शिकायत नहीं की, किसी को ताना नहीं मारा, बस धीर गंभीर लहजे में यही कहा, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मैंने उसकी देखभाल करने के लिए एक नर्स को बुलवा लिया और हॉरेंटिस के साथी अध्यापकों को बताने के लिए एक काल्पनिक कहानी बना ली कि एक तेजी से जा रही घोड़ा गाड़ी ने हॉरेंटिस को टक्कर मार दी और उसे लंगड़ा कर दिया। और संयोग से ये दुर्घटना मेरे ही घर के दरवाजे पर हुई थी, तो सबने मेरे कथन पर पूरी तरह विश्वास कर लिया और गांव का कोतवाल अगले महीने तक इस तरह दुर्घटना करने वाले की खोजबीन करता रहा। महज इतना ही, मेरी दृष्टि में वो स्त्री सही अर्थों में नायिका थी, एक सच्ची बहादुर नायिका। उसमें उन महान लोगों की तमाम खूबियां थीं जो मानव इतिहास में बड़े बड़े कारनामे किया करते हैं। वो उसकी जिंदगी का इकलौता, सबसे पहला और आखिरी प्यार था और वो तमाम उम्र कुंवारी रही और यूं ही चल बसी। वो शहीद हुई, एक सच्ची भली आत्मा और एक आदर्श शांत समर्पिता नारी। सच में अगर हृदय से मैं उसका सम्मान नहीं करता तो आज उसकी ये कहानी आपको नहीं सुनाता, जिसे मैं शायद कभी भी किसी को भी कम से कम उसके जीवित रहते तो नहीं ही सुना सकता था। और ऐसा क्यों है ये सब आप भली तरह से जानते होंगे। चिकित्सक ने बोलना बंद कर दिया। उसकी बात सुनकर मेरी मां रोने लगी और मेरे पिता ने भी कुछ नहीं कहा। जो कुछ भी कहा, मेरी समझ में एक भी शब्द नहीं आया। मैं अपनी आराम कुर्सी में बहुत देर तक घुटनों पर ही झुका रहा और सिसकियां भरता रहा। तभी मैंने कुछ देर बाद लकड़ी की सीढ़ियों पर उतरते भारी जूतों की आवाज सुनी और साथ ही लकड़ी की सीढ़ियों के कोने पर किसी चीज के टकराने की आवाज भी। चंद लोग मिलकर क्लोशेरे उर्फ मदर बेल फ्लावर के निष्प्राण जिस्म को ले जा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे कहानी खूबसूरती और इसके लेखक हैं गी द मोपासा। इस कहानी को आप तक गाथा के जरिए पहुंचाया नैनी दीक्षित ने।